एक तरह ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एक तरह एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञान गोष्ठी में फिर से स्वागत।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी किताब के सफर पर निकल रहे हैं जो नक्शों और रास्तों से कहीं ज्यादा है। ये इंसानी मन की गहराइयों, इतिहास की परतों और कहानियों के जादू के बारे में है।
बिल्कुल सही कहा। हम बात कर रहे हैं ब्रूस चैटविन की लैंडमार्क किताब इन पैटागोनिया की।
हाँ, ये हमें दक्षिण अमेरिका के उस दूर दराज हवाओं वाले कोने में ले जाती है जिसे पैटागोनिया कहते हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में।
जी, किसी भी यात्रा गाइड से एकदम अलग।
और ये आज भी इतनी जरूरी क्यों लगती है पता है?
क्यों?
क्योंकि ये उन सवालों को खुरेदती है जो हम शायद कभी कभी खुद से पूछते हैं।
जैसे कि?
जैसे हम क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, क्यों दूर की अनजान जगहों के सपने हमें खींचते हैं।
और कहानियां?
हाँ, और कैसे हम जो कहानियां सुनते और सुनाते हैं वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं।
सही बात है।
तो चलिए इस अनोखी किताब की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले इस किताब के पीछे की शख्सियत, ब्रूस चैटविन।
हाँ, ब्रूस चैटविन 1940 से 1989 कोई सीधे साधे यात्रा लेखक नहीं थे वो।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका अपना जीवन ही किसी उपन्यास जैसा था।
ये बात तो है। सोचिए, उन्होंने शुरुआत की लंदन के मशहूर नीलामी घर सोथबीज से।
सोथबी?
अच्छा।
हाँ, जहाँ वे बहुत कम उम्र में ही इम्प्रेशनिस्ट आर्ट के बड़े विशेषज्ञ बन गए थे। कहते हैं उनकी नजर गजब की थी
कलाकृतियों की बारीकियों को पहचानने में।
जी,
लेकिन फिर वो कहानी है कि उनकी आंखों में कुछ दिक्कत हुई।
हाँ, कुछ ऐसी दिक्कत हुई कि डॉक्टर ने मजाक में कहा कम तस्वीरें देखो।
अच्छा। और कहते हैं इसी बहाने उन्होंने कला की दुनिया को अलविदा कह दिया और पुरातत्व, आर्कियोलॉजी और प्राचीन इतिहास की पढ़ाई की तरफ मुड़ गए।
एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी गए थे ना वो?
जी हाँ, एडिनबर्ग। है ना अजीब मोड़?
बहुत।
बिल्कुल। और यहीं से उनकी घुमक्कड़ी का कह सकते हैं असली दौर शुरू हुआ,
पत्रकारिता।
हाँ, द संडे टाइम्स मैगजीन के लिए पत्रकारिता करते हुए वे दुनिया भर में घूमे।
कहाँ कहाँ गए?
अरे, अफगानिस्तान, पश्चिम अफ्रीका, न जाने कहाँ कहाँ। और इस अनुभव ने उन्हें चीजों को बहुत गौर से देखना सिखाया। लोगों की अनकही कहानियां सुनना और जो बिखरे हुए तथ्य होते हैं ना,
हाँ,
उनको एक कहानी में पिरोना सिखाया।
वो सिर्फ एडवेंचर खोजने वाले नहीं थे।
नहीं, वो एक स्कॉलरली नोमैड थे, मतलब ज्ञान के प्यासे घुमक्कड़।
बिल्कुल सही शब्द है। उनमें इतिहास, मानव विज्ञान, साहित्य सबकी गहरी समझ थी।
और उनका एक खास विचार था ना कि इंसान स्वभाव से ही यायावर है, नोमैडिक।
हाँ, उनका ये मानना था कि शायद एक जगह टिक कर रहना उतना स्वाभाविक नहीं है हमारे लिए जितना हम समझते हैं।
दिलचस्प। और यही नजरिया, यही सोच उन्हें पैटागोनिया जैसी जगह को समझने के लिए एकदम फिट बनाती है।
पैटागोनिया, जो अपनी वीरानगी के लिए जानी जाती है।
हाँ, वीरानगी, खालीपन और वहां बसने वाले बाहरी लोगों, निर्वासितों की कहानियों से। उनकी वो कला और इतिहास की समझ ने उन्हें चीजों में छिपी कहानियां देखने में मदद की। जैसे वो खाल का टुकड़ा।
हाँ, जिसने पूरी यात्रा शुरू की।
बिल्कुल। वे सिर्फ उस जगह को देख नहीं रहे थे, वे उसे महसूस कर रहे थे।
तो फिर इन पैटागोनिया आखिर है किस बारे में, मतलब सतह पर देखें तो?
सतह पर देखें तो ये चैटविन की पैटागोनिया में की गई करीब 6 महीने की यात्रा का ब्योरा है।
हाँ, और शुरुआत होती है एक बहुत ही निजी चीज से।
वो खाल?
हाँ, उनकी दादी के घर में रखी एक अजीब सी खाल जिसे बचपन में वे ब्रोंटोसॉरस का टुकड़ा मानते थे।
ब्रोंटोसॉरस, हाँ। और बाद में उन्हें पता चला कि ये शायद माइलोडॉन नाम के एक विशाल काय विलुप्त स्लॉथ की खाल है।
माइलोडॉन? अच्छा।
ये एक गुफा से भेजा था, लास्ट होप साउंड नाम की जगह से।
तो ये खाल एक तरह से यात्रा का शुरुआती बिंदु बनी।
हाँ, बिंदु तो बनी, पर किताब बहुत जल्द इस एक खोज से कहीं आगे निकल जाती है।
सही कहा, ये कोई टूरिस्ट गाइड तो बिल्कुल नहीं है।
जरा भी नहीं, ये पैटागोनिया के असली चरित्र को, उसकी आत्मा को पकड़ने की एक कोशिश है।
वहां बसे या वहां से गुजरे लोगों की कहानियों के जरिए।
हाँ, ये भूगोल की यात्रा कम है और इतिहास और इंसानी यादों की गलियों में भटकना ज्यादा।
ये पूछती है कि जब लोग, विचार, सपने दुनिया के हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं तो उनका क्या होता है।
बिल्कुल। चैटविन हमें ब्यूनस आयर्स के वो यूरोपीय रंग से लेकर दक्षिण के बंजर हवाओं से भरे मैदानों
और फिर बर्फीले टियरा डेल फ्यूगो तक ले जाते हैं,
जिसे धरती का आखिरी कोना भी कहा जाता है। लेकिन साथ ही वो हमें समय के सफर पर भी ले जाते हैं।
किनसे मिलवाते हैं?
हम मिलते हैं उन वेल्श राष्ट्रवादियों से जो अपना यूटोपिया बसाने आए थे।
अच्छा, वेल्स से?
हाँ, फिर ब्रिटिश राज से भागे बोर किसान, स्कॉटिश भेड़ पालक जो बड़े जमींदार बन गए, और
अच्छा, बुच कैसिडी
और संडांस किड जैसे अमेरिकी डाकू जिन्होंने वहां पनाह ली थी।
और किताब का ढांचा भी बड़ा अनोखा है, पारंपरिक अध्याय नहीं है।
नहीं, 97 छोटे छोटे शीर्षक वाले खंड हैं, विग्नेट्स।
ये बिखरा हुआ सा ढांचा शायद पैटेगोनिया के खंडित इतिहास को दिखाता है।
हाँ, और वहाँ के लोगों के उखड़े हुए जीवन को भी। इसमें निर्वासन, याददाश्त की प्रकृति, मिथक कैसे बनते हैं,
और इंसान की घूमने फिरने की प्रवृत्ति, नोमैडिज्म।
जी, ये सब विषय बार बार उभरते हैं। चैटविन की दिलचस्पी नजारों से ज्यादा वहाँ के इंसानी ड्रामा में है।
उम्मीदें, नाउम्मीदी, संघर्ष।
बिल्कुल, वे लोगों से मिलते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, पुराने दस्तावेज खंगालते हैं,
और उनकी लिखने की शैली
कमाल की है। एकदम सधी हुई, कम शब्दों में ज्यादा कहने वाली, थोड़ी दूरी बनाए हुए लेकिन पढ़ने वाले पर गहरा असर छोड़ती है।
वो तथ्य, किस्से और ऐतिहासिक रिकॉर्ड सब एक साथ रख देते हैं।
हाँ, और पाठक को खुद सोचने और जोड़ने के लिए छोड़ देते हैं। ये किताब किसी जगह का नक्शा नहीं है।
नहीं, ये एक मानसिक परिदृश्य है, एक स्टेट ऑफ माइंड का चित्र। जैसा हमने कहा, किताब में सीधे अध्याय नहीं है, तो इसे कुछ मुख्य हिस्सों और विषयों के हिसाब से देखते हैं।
हाँ, ठीक रहेगा।
शुरुआत तो जाहिर है उस ब्रोंटोसॉरस की खाल से होती है,
जो यात्रा का मकसद बनती है।
कितनी दिलचस्प बात है ना कि बचपन की एक याद, एक घरेलू चीज, कैसे एक वयस्क को दुनिया के दूसरे छोर तक खींच ले जाती है।
बिल्कुल, और फिर चैटविन का वो मशहूर टेलीग्राम।
हाँ, जो उन्होंने अपने अखबार को भेजा, पैटागोनिया चला गया हूँ।
Have gone to Patagonia.
कितना नाटकीय और निर्णायक कदम।
हाँ, वो टेलीग्राम उनकी अंदरूनी बेचैनी और अनजान की ओर खींचे जाने की इच्छा को दिखाता है। जी, ब्यूनस आयर्स से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए जो शुरुआती खंड है,
हाँ,
वो पैटागोनिया को निर्वासितों की भूमि के रूप में स्थापित करते हैं।
अच्छा,
चैटविन अंग्रेज और स्कॉटिश बाशिंदों के वंशजों से मिलते हैं जो बड़े बड़े खेतों, मतलब एस्तांसियाज पर काफी अलग थलग जिंदगी जी रहे हैं।
उनकी यूरोपीय आदतें वहाँ के माहौल में घुल मिल रही होंगी या बदल रही होंगी।
हाँ, बिल्कुल।
फिर आता है बाइबलाथफा का जिक्र।
ये कहानी है 1860 के दशक में वेल्स से आए उन राष्ट्रवादियों की,
जो अपनी भाषा और संस्कृति बचाना चाहते थे।
हाँ, अंग्रेजी प्रभाव से बचाने के लिए पैटागोनिया में वेल्स से परे एक छोटा वेल्स बसाना चाहते थे।
चैटविन गैमन और ट्राइलेव जैसे शहरों में जाते हैं।
जी, उन बुजुर्गों से मिलते हैं जो अब भी वेल्स बोलते हैं। यहाँ एक विरोधाभास भी दिखता है।
कैसा?
कि कैसे अपनी जमीन से दूर होकर भी कुछ लोग अपनी संस्कृति को शायद ज्यादा शिद्दत से बचाए रखते हैं।
ये तो है।
लेकिन चैटविन इसे किसी वीर गाथा की तरह पेश नहीं करते।
नहीं
नहीं, वे दिखाते हैं कि यह एक अधूरा, कुछ उदास सा सपना है। वेल्श भाषा बोलने वाले कम हो रहे हैं, युवा पीढ़ी बदल रही है।
ओ।
ये विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और एक संस्कृति को नई जमीन पर रोपने की चुनौतियों का बड़ा मार्मिक उदाहरण है।
ये दिखाता है कि कैसे अपनी पुरानी दुनिया को नई जगह बसाने की कोशिश के नतीजे अक्सर मिले जुले होते रहे।
हाँ, कभी कभी दुखद भी। वे इसी तरह दक्षिण अफ्रीका से भागे बोअर किसानों का भी जिक्र करते हैं।
अच्छा, बोअर किसान भी।
जी, इससे पैटागोनिया की छवि दुनिया भर के विस्थापितों के लिए एक आखिरी शरण स्थली के रूप में और मजबूत होती है।
और फिर आता है किताब का शायद सबसे मशहूर हिस्सा,
बुच कैसिडी और संडांग सिड।
हाँ, चैटविन यहाँ लगभग एक जासूस बन जाते हैं।
बिल्कुल, वे उनके पुराने ठिकानों पर जाते हैं, उस फार्म को खोजते हैं जहाँ वो रहे थे,
और उन चंद आखिरी लोगों से मिलते हैं जो उन्हें जानने का दावा करते हैं।
जैसे वो एक बुजुर्ग का जिक्र है, लेवेलिन जोन्स।
हाँ, लेवेलिन जोन्स।
और यहाँ चैटविन कमाल का काम करते हैं ये दिखाने ने कि कैसे किंवदंतियां लेजेंड्स बनती हैं,
कैसे सच और कल्पना।
हाँ, कैसे सच और कल्पना समय के साथ घुल मिल जाते हैं। डाकुओं की वो जो रोमांटिक छवि है ना फिल्मों वाली, चैटविन बताते हैं कि हकीकत ज्यादा जटिल थी, शायद हिंसक भी। वे अक्सर डरे हुए, मुश्किलों में फंसे लोग थे।
अच्छा,
ये हिस्सा ये भी दिखाता है कि कैसे पैटागोनिया जैसी दूर दराज की जगहें आजादी, बगावत, कानून से भागने वालों के सपनों का कैनवस बन जाती हैं। चैटविन इसे 1920 के दशक में पैटागोनिया में हुए अराजकतावादी आंदोलनों और खेत मजदूरों की हड़ताल के क्रूर दमन से भी जोड़ते हैं।
ओ, वो भी।
जी, दोनों ही कहानियां सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध और उसके दुखद अंजाम को दिखाती हैं।
जैसे जैसे चैटविन और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, टियरा डेल फ्यूगो की तरफ।
हाँ, किताब का माहौल और गहरा और उदास होता जाता है।
यहाँ वे पैटागोनिया के इतिहास के सबसे काले अध्याय से रूबरू होते हैं।
वहाँ के मूल निवासियों का लगभग सफाया।
किन जनजातियों का जिक्र है?
टहिवेल्चे, याघन, सेल्कनाम, ये वो जनजातियाँ थीं जो हजारों सालों से उस मुश्किल माहौल में जी रही थीं। लेकिन कुछ ही दशकों में यूरोपीय बीमारियां, भेड़ पालकों द्वारा रखे गए इनामिया शिकारी और जबरदस्ती मुख्य धारा में लाने की कोशिशें,
फोर्स्ड असिमिलेशन,
हाँ, उसने उन्हें लगभग मिटा दिया। चैटविन चार्ल्स डार्विन जैसे खोजकर्ताओं के रिकॉर्ड्स का हवाला देते हैं।
डार्विन ने तो फ्यूजन लोगों को मुश्किल से इंसान माना था।
हाँ, और मिशनरियों के दस्तावेजों का भी जिक्र है। वे उन जगहों पर जाते हैं जहां नरसंहार हुए।
उन मिशन स्टेशनों को देखते हैं जहां इन समुदायों के आखिरी बचे लोग धीरे धीरे खत्म हो गए।
जी, ये हिस्सा उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म और जिसे प्रगति कहा जाता है, उस पर एक बहुत तीखा कटाक्ष है।
विडम्बना देखिए, यूरोपीय निर्वासित अपना इतिहास बचाने आए थे
और उन्होंने वहां के मूल निवासियों का हजारों साल पुराना इतिहास ही मिटा दिया।
ये उन यूरोपीय लोगों के रोमांटिक मिथकों के सामने एक बहुत कड़वा सच रखता है।
हाँ, अब उन मूल निवासियों की कहानियां वहां की हवाओं में भूतों की तरह तैरती महसूस होती हैं।
और यात्रा का अंत होता है दुनिया के आखिरी छोर पर,
उशुआयाहा शहर और चिली के लास्ट होप साउंड के पास।
यही उन्हें मिलती है वो माइलोडॉन गुफा।
हाँ, कुएवा दिल मिलोडॉन, जहाँ से उनके रिश्तेदार को वो खाल मिली थी।
लेकिन ये खोज, जो पूरी यात्रा का मकसद थी,
बहुत ही साधारण सी है, एंटी क्लाइमैक्टिक।
गुफा अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है।
जी, और माइलोडॉन का रहस्य वैज्ञानिक सुलझा चुके हैं।
और शायद यही चैटविन का असली पॉइंट है।
बिल्कुल, यात्रा कभी उस खाल या मंजिल के बारे में थी ही नहीं।
ये तो रास्ते में बिखरी पड़ी कहानियों, मुलाकातों, इतिहास के टुकड़ों को जोड़ने के बारे में थी।
किताब किसी साफ सुथरे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती।
नहीं, बल्कि पाठक को उसी अनथीन हवाओं से भरे पैटागोनियन लैंडस्केप में छोड़ देती है,
जहां अनगिनत कहानियां अभी भी अनकही दफन है।
खाल की खोज तो बस एक बहाना थी,
असली सफर तो उन कहानियों को सुनना था।
हाँ,
इस किताब से वाकई कई गहरे विषय और संदेश उभर कर सामने आते हैं।
हाँ, बिल्कुल।
मुझे लगता है सबसे प्रमुख है यायावरी और मानवीय बेचैनी, Nomadism and human restlessness.
जैसा आपने शुरू में कहा था।
हाँ, चैटविन का ये मूल विश्वास था।
हाँ, कि इंसान शायद बना ही घूमने फिरने के लिए है। एक जगह टिके रहना शायद हमारी फितरत में उतना नहीं।
और पैटागोनिया,
हाँ,
अपनी खाली जगहों के साथ,
हाँ,
इसी घुमक्कड़ी की इच्छा का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है।
किताब में जितने भी किरदार हैं, खोजकर्ता, डाकू, नाविक, विस्थापित किसान, सब कहीं ना कहीं गतिशील हैं, चल रहे हैं।
हाँ, और उतना ही महत्वपूर्ण विषय है निर्वासन और विस्थापन।
हाँ,
एक्साइल एंड डिस्प्लेसमेंट। पैटागोनिया की कहानी काफी हद तक निर्वासितों की ही कहानी है।
वेल्श, बोअर, स्कॉटिश, स्पैनिश अराजकतावादी, अमेरिकी डाकू,
हाँ, सब कहीं और से यहाँ आए या धकेले गए। ये दिखाता है कि कैसे ये समुदाय अपनी पुरानी दुनिया को एक नई अनजान जमीन पर फिर से बनाने की कोशिश करते हैं,
और इसके नतीजे अक्सर दुखद, अजीब या मिले जुले होते हैं।
जी, हम अपने आसपास भी भारत में प्रवासन, माइग्रेशन और विस्थापन की कितनी कहानियां देखते हैं।
हाँ, रोजमर्रा में।
शायद ये किताब उन अनुभवों को समझने का एक अलग नजरिया दे सकती है। ये भी दिखता है कि निर्वासन सिर्फ दुखद नहीं,
कभी कभी मुक्तिदायक भी हो सकता है।
हाँ, लोगों को नई पहचान गढ़ने का मौका दे सकता है।
तीसरा विषय जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, वो है इतिहास और मिथक का धुंधलापन,
ब्लरिंग ऑफ हिस्ट्री एंड मिथ। चैटविन इस बात से मोहित हैं कि कैसे समय के साथ, खासकर दूर दराज की जगहों पर,
ऐतिहासिक तथ्य धीरे धीरे कहानियों और मिथकों में बदल जाते हैं।
हाँ, बुच कैसिडी वाला किस्सा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
चैटविन, आधिकारिक रिकॉर्ड, लोगों की सुनी सुनाई बातें, अफवाहें, सब एक साथ रख देते हैं
और हमें दिखाते हैं कि किसी जगह की कहानी असल में सच और कल्पना का एक जटिल मिश्रण होती है। शायद ऐसी जगहों पर कहानियां ही कठोर जीवन को अर्थ देने का जरिया बन जाती हैं। और चौथा है याददाश्त की नाजुकता
और अतीत का पीछा न छोड़ना, फ्रेजिलिटी ऑफ मेमोरी एंड परसिस्टेंस ऑफ पास्ट।
चैटविन अक्सर उन लोगों से मिलते हैं जो किसी कहानी, किसी भाषा, किसी घटना के आखिरी गवाह हैं।
जी,
इससे एहसास होता है कि इतिहास कितना नाजुक है, सिर्फ इंसानी यादों पर टिका हुआ।
लेकिन साथ ही पैटागोनिया में अतीत हर जगह मौजूद है।
जगहों के नामों में, खंडहरों में, लोगों के अधूरे सपनों में, अतीत पीछा नहीं छोड़ता।
पांचवा, पैटागोनिया खुद एक रूपक है, मेटाफोर।
हाँ, सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं, ये दुनिया का अंत है, एक भौगोलिक सीमा भी और एक मनोवैज्ञानिक अवस्था भी।
ये इंसानी फितरत को चरम स्थितियों में देखने की एक प्रयोगशाला जैसा है।
ये वो खाली कैनवस है जिस पर यूटोपिया बनाने के सपने देखे जाते हैं
और जहां वे अक्सर टूट भी जाते हैं।
शायद इसकी बाहरी वीरानगी वहां रहने वालों की अंदरूनी वीरानगी का भी आईना है,
कह सकते हैं।
और आखिर में जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता,
उपनिवेशवाद की हिंसा, वायलेंस ऑफ कॉलोनियलिज्म।
यूरोपीय घुमक्कड़ों और बाशिंदों की कहानियों के साथ साथ चैटवन बड़ी ईमानदारी से उनके बसने की काली सच्चाई भी सामने लाते हैं।
यानी मूल निवासियों का लगभग पूरी तरह सफाया। ये यूरोपीय लोगों के अपने बारे में गढ़े गए रोमांटिक मिथकों पर एक जरूरी नैतिक सवाल खड़ा करता है।
उन मिटा दिए गए लोगों की भूता गैर मौजूदगी बाकी कहानियों पर एक छाया डालती है।
बिल्कुल, किताब में कुछ पंक्तियां या विचार ऐसे हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं।
कई हैं।
जैसे वो शुरुआत ही, मेरी दादी के डाइनिंग रूम में शीशे वाली अलमारी थी और अलमारी में खाल का एक टुकड़ा।
कितनी साधारण सी बात लगती है,
लेकिन ये दिखाती है कि कैसे असाधारण कहानियां हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे घरों में ही छिपी हो सकती हैं।
एक मामूली सी चीज कैसे दुनिया के दूसरे कोने तक की यात्रा का बीज बन सकती है।
बिल्कुल।
और वो टेलीग्राम, पैटागोनिया चला गया हूँ।
हाँ, ये सिर्फ एक सूचना नहीं है, ये चैटविन की उस बेचैनी, उस रूटीन जिंदगी से ऊब और अनजान की तरफ कूद पड़ने की हिम्मत का प्रतीक है।
उनके लंदन के स्थापित जीवन से एक नाटकीय प्रस्थान।
एक और विचार जो मुझे महत्वपूर्ण लगा वो ये है कि पैटागोनिया शब्द,
हाँ,
टिम्बकटू या समरकंद की तरह उस सबसे दूर जगह का रूपक था जहाँ इंसान जा सकता है।
इससे साफ होता है कि चैटविन की दिलचस्पी सिर्फ भूगोल में नहीं थी।
नहीं, बल्कि पैटागोनिया के आइडिया में थी, एक ऐसी जगह जो कल्पना की सीमाओं पर हो, निर्वासन और अंतिम शरण का प्रतीक।
बिल्कुल। और फिर चैटविन का वो मूल सवाल जो उनके बाद के कामों में और उभरता है,
कौन सा?
कि क्यों हम चलने फिरने वाले व्यक्ति को बेचैन मानते हैं और एक जगह टिके रहने को खुशहाल जीवन का आदर्श।
ये तो सोचने वाली बात है।
ये उनके दर्शन का सार है कि गतिशीलता, घूमना फिरना मानव स्वभाव का एक अहम हिस्सा है, कोई कमी नहीं।
या जैसा किसी और ने कहा है और चैटविन के काम पर फिट बैठता है,
क्या?
यात्रा सिर्फ दिमाग को व्यापक नहीं बनाती, ये दिमाग बनाती है।
ट्रैवल डज नॉट मेरली ब्रॉडन द माइंड, इट मेक्स द माइंड।
वाह, बहुत खूब। मतलब यात्रा सिर्फ ज्ञान बढ़ाने का जरिया नहीं, बल्कि शायद चेतना के निर्माण के लिए ही जरूरी है।
हालांकि ये किताब कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
लेकिन इसे पढ़ने के बाद शायद हम दुनिया, यात्रा और इतिहास को थोड़े अलग नजरिए से देखें।
हाँ, ये हो सकता है।
पहली बात तो यात्रा करने का तरीका ही बदल सकता है।
कैसे?
सिर्फ मशहूर जगहों के पीछे भागने के बजाय कहानियों के पीछे जाना, रुक कर स्थानीय लोगों से बात करना, छोटे अनदेखे म्यूजियम या आर्काइव में झांकना,
उपभोग करने के बजाय जिज्ञासा से पूछना।
सही। दूसरी बात, अपने निजी और पारिवारिक इतिहास का महत्व समझना।
हाँ, कैसे हमारे घर की कोई छोटी सी चीज या कहानी हमें बड़े इतिहास से जोड़ सकती है।
चैटविन की खाल वाली कहानी हमें शायद प्रेरित करे कि हम भी अपने परिवार की कहानियों, अपने बुजुर्गों की यादों को सहेजें, उनसे बात करें।
बिल्कुल। तीसरी चीज, अपनी अंदरूनी बेचैनी और बदलाव की इच्छा को स्वीकारना।
चैटविन दिखाते हैं कि बेचैनी या घूमने की इच्छा कोई बुरी बात नहीं,
बल्कि शायद एक जरूरी मानवीय गुण है।
हाँ, ये हमें बदलाव, रोमांच और नए अनुभवों की तलाश को सकारात्मक रूप से देखने मदद करता है।
चाहे वो सचमुच पैटागोनिया जाना हो या अपने ही शहर को नई नजरों से खोजना।
ये याद दिलाता है कि स्थिरता ही जीवन का एकमात्र आदर्श नहीं है।
चौथी बात, कहानियों के प्रति थोड़ी आलोचनात्मक नजर रखना।
बुच कैसरी की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे मिथक आसानी से सच पर हावी हो जाते हैं।
ये हमें किसी भी जानकारी को, चाहे वो खबर हो, राजनीतिक बयान हो या इतिहास की कहानी, थोड़ा जांच परख कर देखने के लिए प्रेरित करता है,
प्रचलित धारणाओं पर सवाल उठाने और अलग अलग नजरिए तलाशने के लिए।
और पांचवी, निर्वासन और विस्थापन के अनुभव के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखना।
इतने सारे अलग अलग विस्थापित समुदायों की कहानियां पढ़कर हमें नई जगह पर अपनी पहचान बनाए रखने की उनकी चुनौतियों का अंदाजा होता है।
आज जब दुनिया में प्रवासन इतना बढ़ रहा है,
हाँ, ये हमें आप्रवासन की जटिलताओं और कहीं का होने की अपनेपन की गहरी मानवीय जरूरत को समझने में मदद करता है। तो इस सारी बातचीत से सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि दुनिया वाकई कहानियों का एक विशाल पुस्तकालय है और अक्सर सबसे दिलचस्प, सबसे गहरी कहानियां हमें सबसे दूर दराज भुला दिए गए कोनों में मिलती हैं।
शायद यात्रा का असली मजा मंजिल पर पहुंचने में नहीं
बल्कि रास्ते में इन कहानियों, इतिहास के टुकड़ों और मिथकों को इकट्ठा करने में है। चैटविन ने यात्रा लेखन को सिर्फ विवरण देने से उठाकर साहित्यिक और ऐतिहासिक पड़ताल का दर्जा दिया।
मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि चैटविन ने कैसे गहन शोध को ऐसी जादुई, लगभग उपन्यास जैसी कहानी कहने की कला के साथ मिला दिया।
हाँ, ये कमाल का है।
यह सिर्फ एक यात्रा वृत्तांत नहीं है, यह बौद्धिक रूप से उतना ही गहरा और शैली में उतना ही नया है जितना कोई अच्छा उपन्यास हो सकता है।
सही।
और यह भी कि कैसे यात्रा का घोषित उद्देश्य, मतलब वो खाल खोजना, अंत में इतना महत्वहीन हो जाता है।
हाँ, ये दिखाता है कि सफर खुद ही अपनी मंजिल बन गया।
अक्सर हमारी उम्मीदों और हकीकत के बीच का फासला ही सबसे दिलचस्प खोजों को जन्म देता है।
बिल्कुल। और अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
क्या?
अगर पैटागोनिया इंसानी अनुभव के किनारों, हाशिए का एक रूपक है, तो हमारे अपने जीवन में, हमारे समाज में ऐसी कौन सी अनदेखी पैटागोनिया है?
वे कौन से क्षेत्र, कौन से भुला दिए गए इतिहास या कौन से हाशिए पर पड़े समुदाय हैं
जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं या शायद जानने की कोशिश भी नहीं करते।
चैटविन हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया आज भी ऐसे रहस्यों से भरी है जिन्हें खोजने की जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।